وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، تو وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ جو تھے وہ مومن تھے. ایک بات یہاں پہ یہ کہ ابن عباس اس کو اس طرح پڑھتے تھے، امل غلام فکان کافر اباباہ مؤمنین، تو وہ کافر تھا. حدیث میں آتا کہ وہ لڑکا پہلے دن سے کافر تھا، اور وہ اگر زندہ رہتا تو والدین کے لیے بھی کفر کا ذریعہ بنتا. تو اسی لیے آ گیا نا، فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، تو ڈر ہوا ہمیں کہ وہ غالب آ جائے گا ان پر سرکشی کے ساتھ اور کفر کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ کی طرف اگر یہ خشینہ کا لفظ کریں تو اللہ تعالیٰ تو ڈرتا نہیں ہے کسی چیز سے، مطلب ہے کہ ضرور ایسا ہو جانا تھا. اور اگر خضر علیہ السلام کی طرف کریں تو پھر ہاں ڈر تھا، کہ مطلب یہ ہمیں ڈر تھا کہ یعنی یہ ڈیفینیٹلی یہ چیز ہو جانی تھی، 100% یہ ہونا چاہنا تھا. ایسا نہیں تھا کہ ہو سکتا تھا کہ وہ خراب نکل آتا، ہو سکتا تھا کہ وہ صحیح بھی نکل آتا، ایسا نہیں تھا. ہمیں ڈر، ہم اپنے لیے تو ایسا ہی بولتے ہیں نا کہ مجھے ڈر ہے کہ کل کو میری جاب نہ چلی جائے، تو مجھے ڈر ہے کہ مطلب جاب جا بھی سکتی، نہیں بھی جا سکتی، ایسی والی بات نہیں. یہاں پہ ڈیفینیٹ والی بات ہے. تو خشینہ مطلب ہے کہ اب ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو. قتادہ لکھتے ہیں کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا نا تو یہ والدین بہت خوش تھے، لیکن جب وہ فوت ہوا تو وہ بہت غمگین ہوا. مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے لینے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی مشکل سے بچا لیا، کیونکہ یہ بچہ ان کے لیے، ان کے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتا تھا، ان کو کفر تک پہنچا سکتا تھا. اب بظاہر دیکھنے میں یہ فیصلہ کتنا انسان کے لیے ناپسندیدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اولاد کی جو غم ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور انسان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد دنیا سے چلی جائے. اس کی زندگی میں وہ کہتا ہے میری زندگی میں میری اولاد کو لگ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ ان کے لیے کتنا زیادہ ایک مسئلہ پیدا کر سکتا ہے. یورحیقہ ما مطلب ہے کہ اوور برڈن کر دیتا ہوں سرکشی سے اور کفر سے، یعنی ان کے اوپر غالب آ جاتا. مطلب کیا، یعنی وہ بڑا ہوتا تو اس کی محبت جو تھی نا وہ والدین کے دل کے اندر اتنی ہونی تھی کہ وہ جب غلط کاموں کی طرف جاتا، کفر میں جاتا، تو یہ بھی اس کے پیچھے چل پڑتے یا اس کو سپورٹ کرتے اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتے یا اس کے کفر پہ راضی ہو جاتے. وہ اس کی محبت، جو اولاد کی اتنی محبت ہوتی ہے نا، بعض جب آپ دیکھیں والدین اچھے بھلے خود ہوتے ہیں لیکن ان کا بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو بس اس کی جسٹیفیکیشنز دیتے جائیں گے، نہیں وہ ایسے نہیں، وہ تو ایسے، بچے کو سپورٹ ہی کرتے رہیں گے. ایک ماں دیکھیں، ایک ماں نے مجھے خود کہا، کہنے لگی میری بیٹی نے کسی ہندو سے شاید کوئی مشرق سے اس طرح شادی کر لی ہے، تو کہنے لگی کیا ہوا اس نے اگر شادی کر لی، وہ تو مسلمانوں سے بھی زیادہ اچھا ہے. آپ دیکھ لیں نا اولاد کی محبت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی. تو یہ بات سبق ہمیں پتا اس سے یہ چلتا ہے کہ جہاں والدین کا اثر اولاد کے اوپر ہوتا ہے، اولاد کا بھی اثر والدین کے دین پہ ہوتا ہے. والدین کا تو ہوتا ہی ہے نا، لیکن اولاد کا بھی اثر والدین کے دین ایمان پہ ہو جاتا ہے. تو جب والدین کوئی وہ الٹے سیدھے راستے پر لے جاتے ہیں تو اس کو اس لیے قتل کیا گیا کہ اس کے والدین کا دین ایمان بچ جائے. آپ ان دا لانگ رن دیکھیں نا، کوئی کتنا بھی جی لے، کتنی بھی لمبی اولاد کی عمر ہو جاتی، لیکن اگر اس کی وجہ سے آخرت خراب ہو جاتی اولاد کی بھی اور ان والدین کی بھی، تو لوزر تھے. اور اگر آخرت اچھی ہو گئی تو آج نہیں تو کل تو چلے ہی جانا تھا اس بچے نے، بچہ نہیں ہوتا تو بوڑھا ہو کے چلا جاتا، مگر اگر آخرت اچھی ہو گئی تو دنیا کا بڑا سے بڑا نقصان بھی کچھ نہیں. وہ بچہ بچ گیا اور والدین بھی بچ گئے. کیسے بچ گئے؟ وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی دفعہ بات بتائی تھی نا حدیث کے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہ صرف بچ گیا، یہ دستی بچ گئی ہے، تو آپ نے فرمایا یہی تو نہیں بچی، وہ بچ گیا. تو وہ بچہ تو بچ گیا اور والدین بھی بچ گئے، مگر دیکھنے میں یہ بات لگتی ہے کہ بچہ تو ختم ہو گیا. کتنی دکھ والی بات لگتی ہے. لارجر پکچر میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے نا کہ اس نے کیا بننا ہے، اس نے کیا آفت لانی ہے. اور اگر ہم اس باتوں کو ایمان نہ رکھیں कि अल्लाह ताला ने जो फैसला किया है और तकदीर में जो फैसला लिखा है मेरे लिए, वो अल्लाह ताला की हिकमत से है, उसमें खैर है। और अगर हम इस पे ईमान नहीं लाते तो फिर कुरान तो शुरू ही किस बात से हुआ, युमिनूना बिलगैब। तो तकदीर भी गैब है, तकदीर के फैसले भी गैब है, और हमारा ईमान है तकदीर के फैसले अल्लाह ताला की हिकमत पे मबनी है, तो हमें नहीं यकीन अल्लाह की हिकमत पे। फिर हमें नहीं यकीन कि ये अल्लाह ताला का इल्म सही है, अस्तग़फिरुल्लाह। और हम क्या समझते हैं बस सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हैफेजर्ड हो रहा है, खुद ही होता जा रहा है? नहीं, तो कुफर का मतलब ये भी है कि वो ईमान से चला जाता है, या नाशुक्री भी कुफर होती है। और बच्चे के फौत होने से फायदा क्या हुआ कि उनका ईमान बच गया, बल्कि उनके दर्जे बुलंद हो गए। आप सोचेंगे तो फिर अल्लाह ताला उनको बच्चा देता ही ना, हालांकि अल्लाह ताला हदीस में आता किसी से प्यारी चीज उसे ले ले और वो उस पर सबर करता तो उसके लिए जन्नत के सिवा कोई बदला नहीं। अल्लाह ताला ने उनको जन्नत देनी थी, अल्लाह ताला ने तो उनके साथ और भलाई कर दी, उनका बच्चा देख के उनसे लिया, उस पर उन्होंने सबर किया, उनके लिए जन्नत हो। दूसरी हदीस में एक और में आता है कि एक औरत आके कहती है, या रसूल अल्लाह मेरे 3 बच्चे फौत हो गए। आपने फरमाया 3? बोली हाँ। आपने फरमाया फिर वो तुम्हारे लिए जन्म के आगे आड़ बन जाएगा, 3 आड़ बन जाएंगे, 3 रुकावटें हो जाएंगी, 3 बच्चे थे ना। सुभान अल्लाह। एक और हदीस में आता है कि जब किसी की औलाद वफात पा जाती है और वो उसके ऊपर सबर करता है, तो अल्लाह ताला अपने फरिश्ते से कहते थे मेरे बंदे ने क्या कहा जब तुमने उसकी प्यारी चीज उसे छीन ली, उसके दिल का टुकड़ा उसे ले लिया? तो वो कहते हैं अल्लाह ताला उससे तेरी हम्द बयान की। अल्लाह ताला फरमाते हैं इसके लिए जन्नत में बैतुल हम्द बना दो। ये सबर का नतीजा है। देखिए वक्त के साथ साथ तो सबको ही सबर आ जाता है, उसमें क्या कहना, भाई सबर आ गया अब तो सबर ही करना है, वो तो फिर सबर आ ही जाना। लेकिन असल बात ये, उस वक्त जिस वक्त ये मामला हुआ, उस वक्त जो सबर करता है उसके लिए इतना बड़ा रिवॉर्ड है कि जन्नत की बशारत। उस टाइम पे अल्लाह ताला देखता है कि इसका रिएक्शन क्या हुआ, क्या ये मेरी हम्द बयान करता है, क्या ये सबर करता है? और रिश्ते कहते हैं उसने इन्ना लिल्लाह कहा। अल्लाह ताला उसने तेरी हम्द बयान की, तेरी तारीफ बयान की, उसने सबर किया, उसने शुक्र किया, तो इसलिए तो अजर बहुत बड़ा है। अब वक्त के साथ साथ सबर तो काफिर को भी आ जाता है, तो ईमान वाले का फिर क्या सबर हुआ? इसी तरह तिर्मिजी के हदीस में आता है, आप सल्लम ने फरमाया कि जन्नत से कम कोई जजा नहीं है उसके लिए जो किसी प्यारे की वफात के सदमे पर सबर से सबर करता है। जन्नत से कम कोई चीज नहीं उसके लिए, यानी कोई और बदला नहीं है, बस उसको जन्नत ही मिलेगी। और छोटे बच्चे जो फौत हो जाते हैं उनकी तो फरमाया, जैसे यहां पे आया तो उनके बारे में हदीस है कि वो शिफात की इजाजत उनको मिलेगी क्यामत के दिन। वो अल्लाह ताला से फरियादे करेंगे कि या अल्लाह हमारे वालदैन को बख्श दे, इसलिए कि उन्होंने सबर किया था हमारी वफात। और फिर एक में आता है कि एक हदीस में आता है कि वो जन्नत के दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहे होंगे और अपने वालदेन का हाथ पकड़ के उनको जिस दरवाजे से वो चाहेंगे उससे दाखिल कराएंगे वो बच्चे। यही तो फर्क होता है ना, जब हम कुरान पढ़ने लगते हैं ना तो कुरान हमारी आंखें ऐसे खोल देता है कि आखिरत में खोल देता है, कि पहले हम सिर्फ दुनिया को देखते थे और यहीं के प्लस माइनस करते हैं, ओहो किसी का नुकसान हो गया, ओहो किसी का फायदा हो गया, ये बड़ा अच्छा रह गया जिसका पैसा मिल गया, ये बड़ा नाकाम हो गया, ये बड़ा बेचारा बेमुराद हो गया, हाय हाय इसके साथ तो ये तकलीफ हो गई, इसको तो ये बीमारी हो गई, इसको तो बच्चा फौत हो गया इसका तो, और यहीं पे हम उसको बेचारा और अफसोस और ये तो बस लूजर और फलाना तो ऐसे, ये हम जब हम दुनिया को सिर्फ देखते हैं इसकी नजर से। लेकिन अगर आप आखरत कुरान पढ़ के अगर आखरत की आंख ना खुली, आखरत में आंख अगर आप नहीं खोल रहे अभी तक, तो फिर कुरान पढ़ने से आपने क्या हासिल किया? अगर आखरत में आपको नहीं ये समझ आ रही कि इसका क्या वहां पे मिलना है, देखो इसका कितना फायदा, आप सिर्फ सतही चीज देख रहे हैं, जो एक काफिर भी यही देख रहा है कि ये बेचारे का हाय कितना दुखी बात है, इसका तो नुकसान हो गया, इसका तो बच्चा मौत हो गया, ये तो उसके लिए कितनी बड़ी बड़ी बिशारतें। तो एक और बात इसमें कि तकदीर के फैसले को एक्सेप्ट करना, अल्लाह ताला ने जो कदर लिख दी है, जो काम हम नहीं भी समझ सकते, कोई हादसा पेश आ जाता है, कोई आफत आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जॉब चली जाती है, किसी का वीजा नहीं लग रहा है, तो ये किस्सा ना भूलें कि अल्लाह को पता है क्यों ये काम नहीं हो रहा। हम ये करते रहते हैं, हाय ये ऐसे क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, वो अल्लाह को पता है। बहुत से हादसा, बहुत से प्रॉब्लम जिंदगी में आते हैं जिनसे इंसान बड़ा कुछ लर्न करके बड़ा आगे चला जाता है, अल्लाह के यहाँ इतने दर्जात पा लेता है, इवन इस दुनिया की जिंदगी में भी वो उन मकामात पे पहुंच जाता है, शायद आज भी हम भी जहां खड़े हैं वहां पे ना होते अगर वो हमारी जिंदगी में वो रुकावटें ना आती जो कभी आई थी, जो कभी हमारे साथ मसले हुए थे जिनको हमने बुरा जाना था। छोटी सी एक मिसाल आपको देती हूँ, बिल्कुल छोटी सी, आप बहुत सारी मिसालें हैं लेकिन एक मिसाल से सिर्फ आपको कहती हूँ, कहते हैं जब हम छोटे होते हैं, टीनेजर होते हैं लड़कियां खासतौर पे, हमारे वालदैन कितनी रोक टोक करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस इतनी हमारे ऊपर लगाते हैं, इसके नहीं जाना, उधर नहीं जाना, इस सहेली के पास नहीं जाना, उसके किसी के घर पे नहीं रहना, रात को नहीं रहना, फलाने, और इतना उस वक्त गुस्सा आता है कि हाय हमारे ऊपर ही सारी रिस्ट्रिक्शन, हमारे साथ ही सारे मसले, हमारे भाई तो हर तरफ घूमते फिरते हैं, उन पे तो कोई पाबंदी नहीं है, हाय हमारे लिए मुसीबत, और ऐसे लगता है जैसे बस पता नहीं किस मुसीबत में हम फंस गए, हालांकि पता नहीं वो पाबंदियां ना लगाते तो हम किसी गलत लोगों के हाथ में ना लग जाते, किसी ट्रैप में ना फंस जाते। तो देखा जाए तो इंसान की जिंदगी में ये पाबंदियां, रुकावटें, मसाइल उस वक्त बड़ी मुसीबत लगते हैं, उस वक्त के वो दुख ऐसे लगते हैं कि जैसे इससे बड़ा कोई दुख है ही नहीं, मगर उसके बाद भी अगर देखा जाए तो उसके अंदर कितनी खैर है वो इंसान समझ ही नहीं सकता। बास बच्चे रो रो के डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हाय मेरे नंबर नहीं आए इतने, क्या पता आपके नंबर आ जाते हैं, आपको उस कॉलेज में जहां पे आप मेडिकल स्कूल में जाना है वहां पे चले जाते तो क्या हो जाता आगे। मुझे किसी ने बताया कि एक रेजिडेंसी करने में किसी ने खुदकुशी कर ली, इतना उसको प्रेशर था, आप कोविड में देख लें कई डॉक्टर्स ने खुदकुशियां कर ली, वो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सके। तो यही सोच रही थी देखो जिस वक्त डॉक्टर बने होंगे या जिस वक्त इनको दाखिले मिले होंगे कितने खुश होंगे, लेकिन यही प्रोफेशन उनके लिए जानलेवा हो गया ना, उनको इंसान को उस वक्त नहीं पता होता, वो सोच रहा था अब किसी को ना मिले तो वो रो रहा होगा, उसको नहीं पता कि कल को उसको मिल जाए तो उसका ये हाल हो। इसी तरह कई लड़कियां वो हर वक्त इसी के ऊपर रोती रहती हैं कि हम इतनी खूबसूरत नहीं है, खूबसूरती फिर देख लें यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती ने कितना फितने में डाल दी, क्या पता है कौन लोग पीछे लग जाएं, क्या पता है किसी की नजर लग जाए, क्या पता है क्या हो जाए इस खूबसूरती की वजह से। तो हम नहीं जानते, कोई जॉब नहीं मिली तो उसके ऊपर लोग रोते हैं, हाय क्यों नहीं मुझे जॉब मिली, उसके ऊपर स्ट्रेस में आ जाते हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा, डिप्रेशन हो गया है, पता नहीं क्या क्या, इसलिए कि हमारा ये तकदीर पर ईमान नहीं, और इसलिए कि हम इन चीजों को जो ये कुरान हमें सिखा रहा है इनके ऊपर हमारा यकीन नहीं है। कहीं लेट हो जाते हैं तो कितना तूफान खड़ा कर देते हैं। एक मुझे बात हादसा नहीं भूलता किसी के साथ हुआ था, दो लोग थे एक फैमिली के, बहनोई साला बहनोई थे शायद इस तरह, तो वो दोनों अगले दिन ईद थी रात को अपनी फैमिली को अपने घर पे उतारा उन्होंने, और उन्होंने कहा हम करीबी शॉप से जाके कॉफी लेकर आ रहे हैं, करीबी शॉप से बाहर निकले, सामने से एक लड़का जो अपने घर से डिप्रेशन में निकला था उसने लाके गाड़ी इनके सामने मारी और दोनों सारे ही खत्म हो गए। अब बड़ी पिक्चर में देखें तो ये हादसा होना था, इन्होंने ऐसे निकलना था और इस टाइम पे यहां पहुंचना था, और कई दफा मैं जब भी इस हादसे का सोचती हूँ सोचू अल्लाह एक सेकंड की भी अगर ताखीर हो जाती तो वो लड़का निकल जाता, जैसे मैंने अभी आपको ये कश्ती वालों की बात बताई कि वो बादशाह निकल जाता और ये जब कश्ती लेकर आते तो वो जा चुका होता, तो वो 2 मिनट कोई बच्चा रोने लग जाता है, टायर पंक्चर हो जाता, चाबी गुम हो जाती, किसी का कुछ हो जाता, कोई और फोन आ जाता, कोई बुला लेता, तो ये उससे बच सकते थे। कई दफा हमारे साथ ऐसे होता ना, लेकिन हम उसके ऊपर बहुत तड़पते हैं। लेकिन वो अल्लाह ने किसी हादसे से हमें रोकना होता है, इनकी तकदीर में लिखा होता है ये वहां पहुंच गए। तो इसलिए चीजों को हम नहीं लार्जर पिक्चर में देख सकते, ये मान जाए। और हमारी इतनी इस्तेआत ही नहीं है, इसलिए जो चीज आपके साथ हो रही होती है उसके ऊपर ये समझ लिया करें कि ये अल्लाह ताला ने मेरे साथ कोई भलाई की है, इसके अंदर इस शर में भी कोई खैर है मेरी। और देखें आगे क्या हुआ, क्योंकि वो नेक थे इसलिए फअरदना अन युगदिल्लाहुमा। अब ये इसको भी नोट करें, अदना को, कि हमने इरादा किया कि अन युबदिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु ज़कातन व अक़रबा, कि बदल कर दे उनको उनका रब बेहतर इससे, पाकीज़गी में और ज्यादा करीब शफ़क़त में। इसकी दो किरात हैं, युबदिलहुमा और जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं युबदिलहुमा, युबदिलहुमा और इसमें थोड़ा सा फर्क है। युबदिलहुमा जो पढ़ते हैं वो किरात भी है, उसमें यह है कि असल चीज बाकी रहती है, उसकी सिफत बदल जाती है। मसलन है कि आपकी आपका घर है, आपने उसको सारा रिमॉडल कर दिया, घर तो वही है लेकिन आपने अंदर रिमॉडल कर दिया, उसको बिल्कुल ही अंदर से नया बना लिया। और युबदिला हुमा का मतलब क्या है, बिल्कुल ही रिप्लेस कर देना, यानी आपने ये घर छोड़ के नया घर ले लिया, ठीक है। तो जो युबदिला हुमा तर्जुमा सॉरी किरात करते, वो इसका तर्जुमा ये लेते हैं कि अल्लाह ताला ने एक और लड़का दे दिया मगर उसकी सिफात अच्छी थी, वो ऐसा नहीं था। दूसरा युबदिला हुमा कह दिया कि बिल्कुल ही बदल दिया, तो यानी उन्होंने उनको अल्लाह ताला ने लड़का नहीं दिया, फिर लड़की दे दी। तो उलमा कहते हैं कि बाहर क्या लड़का दिया या लड़की दी, रिप्लेस कर दिया आपने, बदल दिया उससे, बेहतर चीज दे दी उससे, उनको अजर भी मिल गया, उनको उससे बेहतर चीज भी मिल गई। और अल्लाह ताला ने यहाँ पे देखें ये नहीं फरमाया उनको हमने लड़का ही दिया कि एक गुलाम और दे दिया या लड़की दे दी, क्यों नहीं ये फरमाया, ये फरमा दिया कि खैरम मिन्हु ज़कातम वअक़रबा रहमा। देखें इसलिए कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह के नजदीक इस चीज की कोई अहमियत नहीं कि वो लड़का है या लड़की है, इस चीज की अहमियत है कि वो किस किस्म का इंसान है। कि यानी यहाँ पे देखिए ज़कातन का मतलब क्या, पाक, पाकीज़ा, ईमान में पाकीज़ा, इखलास वाला, ठीक है, पाकीज़गी वाला, प्योर, दीन में प्योर, और अकरब रहमा, शफकत वाला, कहा जाता है अपने वालदेन के साथ बहुत शफकीक, मेहरबान, बेटी या बेटा, और बास तफसीरों में आता है कि सब लोगों के साथ शफीक और मेहरबान, यानी अखलाक वाला। तो ईमान में भी अच्छा और अखलाक में भी अच्छा, क्योंकि जब रहम होता है, शफकत होती है, तो वो अखलाक की बात है। तो बेस्ट कैरेक्टर वाला बच्चा दिया, तो अल्लाह ताला को तो इस चीज से, यानी अल्लाह के नजदीक ये चीज अहमियत रखती है। अगर लड़का हो जाए और वो उसका ईमान ही सही नहीं है और वो अखलाक में भी अच्छा नहीं, तो उसके उसका क्या फायदा। और लड़की हो, चाहे वो लड़की है, लेकिन अगर उसके अखलाक अच्छे हैं, किरदार अच्छा है, ईमान अच्छा है, नेक है, तो वो ज्यादा बेहतर है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनको बेहतरीन चीज अता फरमाई। इससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला जब किसी से कुछ लेता है और इंसान उसके ऊपर सबर कर देता है ना, तो अल्लाह ताला जरूर उसको उससे बेहतर नेमत बदल देता है। हदीस में भी आता है कि अल्लाह ताला जब किसी से कुछ लेता है तो उसको उससे बेहतर अता करता। कभी ऐसा नहीं होता कि इंसान कुछ छोड़े अल्लाह के लिए और अल्लाह ताला उसको उससे बेहतर ना दे। मसलन आप कोई अपनी बुरी कंपनी छोड़ते हैं, ऐसे दोस्तों को छोड़ देते हैं, जैसे आपने आप पीछे पढ़ा कि अपने आप के इन दोस्तों के साथ लगाओ जो अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं, जो ऐसे हैं, ऐसे दोस्तों को छोड़ दो जो दुनिया की जीनत के पीछे। तो अब आपने सोचा, लेकिन आप वो एकदम दिल में आता है, हाय मैं अपने दोस्तों को छोड़ दूँ, वो तो मेरे इतने पुराने दोस्त हैं, वो तो मुझे समझते हैं, कितना मुश्किल है न्यू फ्रेंड्स बनाना। लेकिन अल्लाह की खातिर जब आप करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको उससे बेहतर नेमुल बदल जरूर देता है, अल्लाह ताला आपको कॉम्पेंसेट जरूर करता है। कभी हम देखे तो देखे, हम डरते हैं। आप देखिए, हम एक दफा जुनेद जमशेद, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उसने कहा था कि मैंने गाना बजाना, शोहरत, पैसा छोड़ा अल्लाह की खातिर, तो अल्लाह ताला ने मुझे इससे भी बेहतर दे दिया। कहता अभी भी मेरी शोहरत है, और देख लें उसकी शोहरत, उससे बेहतर शोहरत उसको मिल गई। पहले क्या था, गाने बजाने की शोहरत, अब दीन की शोहरत मिल गई। फिर क्या, पैसा छोड़ा कि जो गाने से मिलता था, अल्लाह ने उससे उसका ब्रांड नेम ऐसा चलाया कि उसके जाने के बाद भी वो चल रहा है। सुभान अल्लाह, तो कहीं अल्लाह कमी नहीं आने देता। तो जब आप किसी चीज को भी छोड़ते हैं, या कोई चीज अल्लाह ताला आपसे ले लेता है और उसके ऊपर आप सबर करते हैं ना, अल्लाह की खातिर सबर करते हैं, तो अल्लाह ताला बेहतर अता फरमाता है। हराम को छोड़ा अल्लाह की खातिर कि ये हराम है, अल्लाह ताला हलाल अता फरमा देगा, वो हलाल रिस्क फरमानी कर देगा। बस यकीन होना चाहिए ना, सिर्फ यकीन नहीं होता। और आगे जो तीसरा किस्सा था वो अम्मल जिदार, और जहां तक दीवार का ताल्लुक है, फकान अली गुलामैन यतीमैन फिल मदीना, तो वो थी दो लड़कों की, यतीम लड़कों की, जो शहर में थे। अब पहले क्या कहा गया, नोट करें आप, पहले क्या कहा गया था, कहां पे वो गए थे खिजर और मूसा अलैहिस्सलाम। मदीना का तो लफ्ज ही नहीं आया पहले, पहले करिया का लफ्ज आया। जब उनके बुखल की बात की गई तो करिया का लफ्ज आया, और बुखल भी इंसान को ना देखें कहाँ तक पहुंचा देता है, कि रहती दुनिया तक उस बस्ती का जिक्र ऐसे ही चलता रहेगा कि वो उन्होंने मेहमान नवाजी नहीं की, मेहमान नवाजी नहीं की। कहते हैं बाद में इस बस्ती वाले लोग भी कोई आए और उन्होंने आके कहा भी कि कुरान के अंदर ये है बात, तो इसको जरा कुछ इस तरह से कर दिया जाए, लेकिन ये कुरान है, ये तो नहीं बदल सकता। पशेमानी उनको हुई। लेकिन देखें, बुखल खैर को दूर कर देता है। अब वो कितने बड़े खैर के बाइस थे खिजर और मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन उन्होंने उनकी उनकी बरकतें और उनकी खैर वो पा नहीं सके। अब ये उन्होंने जो हाँ, ये जो करिया की वहां पे लफ्ज आया, जो बस्ती छोटे से गांव को कहते हैं करिया, और मदीना शहर को कहते हैं। जिस वक्त उनके बुखल की बात थी तो अल्लाह ताला ने करिया फरमाया, और जब वो दो यतीम लड़कों की बात आई तो शहर कहा, ने उसको भी एक तरह से उसकी भी वैल्यू बढ़ा दी, उसकी भी उसको भी अपग्रेड करके बताया गया। तो वकाना, अच्छा, गुलामैन यतीमैन फिल मदीना, वकाना तहता हु कंजुल्लहुमा, तो उन उसके नीचे, दीवार के नीचे उनका खजाना था। उनका बाप उनके लिए खजाना छोड़ गया था। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई इंसान अपनी औलाद के लिए खजाना भी छोड़ के जा सकता है, यानी अगर कोई अपने बच्चों के लिए पीछे कुछ छोड़ जाए तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है कि आप अपने बच्चों को गनी छोड़ के जाएं। वो क्या ना, अबूहुमा सालेहा, और उनका बाप नेक आदमी था, इस वजह से अल्लाह ताला ने फरादा रब्बू का तो इरादा किया तेरे रब ने, अय्यबलुगा अशुद्धा हुमा, के वो बड़े हो जाएं अपनी अशुद्धा हुमा से मतलब है बलूगत भी है। और बाज ने कहा, जैसे हम पहले सूरह निसा में भी यतीमों की बात पढ़ चुके हैं, तो एक सवाल आया था कि बाले हो, मसलन कोई 10 साल का बाले हो जाता है तो क्या उसको उसका माल दे दिया जाए, तो अशुद्ध से बाज ने मुराद लिया कि नहीं, जब वो स्ट्रोंग हो जाए, यानी समझ बूझ आ जाए, अकल आ जाए जिस्मानी तौर पे भी, और यानी अकल में भी समझ आ, जिसको कहते हैं मेच्योरिटी के एज को पहुंच जाए, हैंडल कर सकते हैं अपने मामला को, तो जब वो मेच्योर हो जाए, वह यस्तखरिजा कंजहुमा, तो वो दोनों निकाल लें अपने खजाने को। ये रहमत थी तेरे रब की तरफ से, ये अल्लाह की तरफ से रहमत थी कि अल्लाह ताला ने उनके साथ रहम का मामला फरमाया। क्यों, वकाना अबूहुमा सालेहा, क्योंकि उनका बाप नेक आदमी था। सूरह निसा में नहीं आता, बल यख्शल्लज़ीन लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम, जो अगर कोई तुम में से कोई औलाद छोड़ जाता है, तुम जिसके बारे में डरते हो ना कि आई मेरी औलाद का क्या होगा, वल्या तकुल्ला वल्या कुलू कौलन सदीदा, तो क्या उसको करना चाहिए, वो तकवा इख्तियार करे, यानी नेक खुद बने और सीधी बात करे, यानी अपनी जुबान की हिफाजत करे, अपनी जुबान को स्ट्रेट रखे, तो अल्लाह ताला उसके लिए खुद ही उसके बच्चों की हिफाजत करेगा। ये तो इंसान को होता है ना, कौन संभालेगा मेरे बच्चे, हाय मेरे पीछे बच्चे, वो कौन देखेगा, सब डरते हैं इस बारे में। तो इसका हल ठीक है, आप बच्चों के लिए अकाउंट तो भर के छोड़ जाते हैं, लेकिन उसका क्या पता वो जाया हो जाए। लेकिन असल बात क्या है, तकवा इख्तियार करें, पहले खुद नेक बने। अगर आप नेक होंगे और आप अपनी इस सूरह निसा में तो जुबान की हिफाजत और नेकी की बात है ना, अगर आप नेक होंगे खुद और अपनी जुबान की हिफाजत करते होंगे तो अल्लाह ताला आपकी औलाद की हिफाजत करेगा, उनके सरमाए की भी हिफाजत करेगा। वरना अगर आप खुद नहीं नेक होते तो हो सकता है पीछे लोग लूट खसूट ले, इतने लोग यतीमों के माल को लूट लेते हैं। अच्छे भले माशरों के अंदर देखें क्या आज हालात चल रहे हैं, और ये तो वैसे ही एक बखील बस्ती थी जो इतने कंजूस थे कि किसी को खाना खिलाने के भी रवादार नहीं, उनके हाथों में अगर खजाना आ जाता तो बिल्कुल ही ना इन बच्चों को देते। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि तुम सूरह निसा से भी आप सबक लें और यहां पे भी कि अगर आपको अपने बच्चों के लिए कभी भी डर लगता है तो खुद नेक बन जाए, खुद अपनी जुबान की हिफाजत करें और इसको घर से शुरू करें। माँ बाप एक दूसरे के साथ नेकी करें, माँ बाप एक दूसरे के साथ दरगुजर करें, खुदा खौफी के साथ मामलात करें, सिर्फ बाहर जाके नहीं घर में भी नेकी के साथ रहें, अल्लाह का डर रखें। लोगों के आगे तो हम बन जाते हैं, अपने घर में अपने बच्चों के आगे नेक बने, नेकी उनको नजर आए आपके अंदर, और जुबान सीधी रखें बच्चों के सामने भी, तो देखिएगा कि अल्लाह ताला आपके बच्चों की हिफाजत करेगा। तो इससे हमें ये लेसन मिल गया कि बाप की नेकी औलाद के काम आती है। इसी वजह से सईद बिन मुसैब बहुत बड़े एक ताबेई हैं, तो रात की नमाज पढ़ा करते थे, तो अपने बच्चे को करीब लेटा होता था तो उसको कहते थे, जब थक जाते थे ना जरा, तो कहते थे कि तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए है, यानी ये अपने बच्चे के बेटर फ्यूचर के लिए। हम बेटर फ्यूचर के लिए कितनी जगह इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कितनी जगह कहीं पॉलिसी लेते हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम खुद उसको हेल्प कर सकते हैं अपनी इबादत से, अपनी नेकी से। क्या हमने अपनी औलादों की बेटर फ्यूचर के लिए खुद अपनी इबादत को बढ़ाया, कयामुल लैल किया, अपने अखलाक दुरुस्त किए, अपनी जुबान को सीधा किया, अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत किया, या बस यही कहते रहते हाय औलाद नहीं को जा, औलाद नहीं को जा। उमर बिन अब्दुल अजीज कहा करते थे कि नेकी जो है सात पुश्तों तक जाती है, सात पुश्तों तक, यानी अगर हमारी सात पुश्तों में किसी ने नेकी की होगी ना तो औलाद अगली नस्लों में असर आता है, नेकी के असरात होते हैं। आप ये देख लें यहाँ पे बाप नेक था तो असर आया ना, आगे असर आया, अल्लाह ताला ने फिर हिफाजत की है। तो इसलिए नेकी करेंगे तो आगे अल्लाह ताला हिफाजत करेगा बच्चों की, उनकी ना सिर्फ माल की, उनके किरदार की भी। पिछली वाली बात में भी देख लें क्या है नेकी। अच्छा, आप तीनों किस्सों में एक चीज आप कॉमन देखेंगे, क्या चीज है कॉमन तीनों में? पहले किस्से के अंदर वो मिस्कीन थे मगर उन्होंने नेकी की है ना, तो अपनी चीज को बचा लिया। फिर नेक वालदेन थे तो अल्लाह ताला ने उनकी औलाद को बचाया, यानी एक फौत करके दूसरी दी, जिस यानी उनकी उनके दीन ईमान को, उनकी औलाद को बचा लिया। जब फौत हो गया वो भी बच गया ना, वो तो छोटा ही फौत हो गया, उसका तो कोई अब गुनाह नहीं, और इनके ही दीन ईमान को भी बचाया और इनको नई औलाद दे दी, तो बचा लिया। अब और इसी तरह यहां पे यतीम बच्चों के खजाने को बचा लिया इनके नेक बाप की वजह से। तो कॉमन चीज क्या हुई? अपनी नेकी, अपने आप से हम स्टार्ट करें। तो उन्होंने कहा ये मैंने अपने पास से नहीं किया, वमा फालतू अन अम्री, ताकि मूसा अलैहि सलाम समझ जाएं कि ये मैंने कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि ये अल्लाह के हुक्म से ही किया। इससे ये पता चलता है कि जो भी खजर अलैहि सलाम को ऑर्डर्स आए थे उन्होंने उनके मुताबिक काम किया। और कहीं हम ये नहीं देखते कि नबियों को ऐसे ऑर्डर्स आ रहे हो कि वो कभी किसी को कत्ल कर दें, कभी किसी की दीवारें से ही कर लें, कभी किसी के मतलब कश्ती को खराब कर दें, माल का नुकसान कर दें, ऐसे तो हमने कोई भी नहीं नबियों को देखा, तो ये फरिश्ते होंगे। सुभान अल्लाह, उलमा ने बहुत ही खूबसूरत एक और बड़ा प्यारा नुक्ता इसके अंदर बताया। उन्होंने कहा कि देखें, अगर आप मूसा अलैहि सलाम की जिंदगी को भी देखें ना, तो आपको इससे मिलते जुलते ही वाकयात मिलेंगे। ये जो तीनों स्टोरीज है ना, ये मूसा अलैहि सलाम की जिंदगी में भी इस तरह की चीजें आई हैं। पहली चीज जिसमें उन्होंने ऑब्जेक्शन की है, उन्होंने कहा कि ये आपने इस तरह कर दिया, इससे तो गर्क हो जाएंगे सारे सारे, डूब जाएंगे। तो वो भी देखें कि वो उनको भी जब उनकी माँ ने एक बास्केट के अंदर डाल के और दरिया में छोड़ दिया था, तो वो डूबे नहीं थे, अल्लाह ने उनको भी तो बचा लिया था, तो अल्लाह इनको भी बचा लेगा। सुभान अल्लाह। हाँ, और दूसरी, वो लड़का कत्ल हुआ जो बाद में जाके सरकशी करने वाला था, तो आपके हाथ से भी कबती कत्ल हुआ था जो काफिर और सरकश था। मगर इसके लिए इस वजह से, इस कत्ल की वजह से आपके लिए खैर का दरवाजा खुला कि आप वहां से निकले और फिर जाके अल्लाह ताला ने आपको ट्रेन किया और आपकी शादी कराई और आपको घर दिया और आपको क्या कुछ नहीं, वो जो वहां पे महलों में बैठ के नहीं वो ट्रेनिंग हो सकती थी। तीसरे वाक्य में देखें, अब वो कह रहे हैं कि आपने चार्ज क्यों नहीं किया, उजरत क्यों नहीं ली इनसे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी तो जब दो लड़कियों को की बकरियों को पानी पिलाया था, तो उन्होंने भी तो उजरत नहीं ली थी। हाँ, तो उनके लिए भी तो फ्री में काम किया था। तो अगर गौर करें तो जिन चीजों पे उन्होंने सवाल उठाए थे, वैसे ही वाकयात उनकी जिंदगी में गुजर चुके थे। लेकिन हर जगह मूसा अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन ही नतीजा देखा ना, कि कितना पॉजिटिव नतीजा आया हर चीज में। ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا, ये है हकीकत उसकी जिसकी तुम इस्तात नहीं रख सके सबर करने की। ये उन सारों की डिटेल बता दी गई। तो खुलासा क्या हुआ, अगर आप खुद नेक हैं तो फिर कोई चीज आपको नुकसान नहीं दे सकती। फिर हर अल्लाह का फैसला जो है ना, वो आपके हक में ही है, ये आप यकीन कर लें। अगर आप खुद नेक हैं, आप खुद भलाई पे हैं, तो चाहे कोई हादसा जिंदगी में आए, चाहे कोई मसला आए, चाहे कोई नुकसान हो, चाहे किसी कोई प्यारा बिछड़ जाए, कोई बीमारी आ जाए, मगर फिर ये यकीन रखें कि मेरा अल्लाह मुझे छोड़ता नहीं है। एज लॉन्ग एज आपका अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। ये नहीं हो कि भाई ताल्लुक ही नहीं है और कहीं और ही, फिर तो सजा के तौर पे भी चीजें आती हैं। अगर ताल्लुक मजबूत है ना, तो बाज लोग बहुत फिर कहते हैं हमारा तो अल्लाह से ताल्लुक बड़ा मजबूत, हम तो ये भी करते हैं, हमारे ऊपर क्यों मुश्किल आ गई, तो क्यों परेशान हो रहे हैं। पर यकीन कर लेना कि इसमें भलाई है, इस मुश्किल के अंदर, इस बीमारी में भलाई है, इस जुदाई में भलाई है। मतलब फिर उसके पीछे कोई हिकमत है, कोई खैर है, चाहे मुझे समझ नहीं भी आती तो कोई बात नहीं है। और ये समझ जाए कि अल्लाह ताला मेरी टेक केयर करेगा, बेफिक्र हो जाए, गम ना करें, फिर बिल्कुल डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, परेशान ना हो, ये क्यों हुआ, हाय क्यों हो गया, हाय अब क्या होगा, हाय अब क्यों, इसके साथ क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, बच्चों का मेरे क्या होगा, फलान का क्या होगा, कारोबार का क्या होगा, अब तो ये सब गलत हो गया, कश्ती टूट गई, अब कारोबार का क्या होगा, आए औलाद ऐसी निकल आई, अब क्या होगा, आए इसका क्या बनेगा, उस मैं मर गया तो फिर मेरे बच्चों को पीछे कौन देखेगा। सब चीजों की फिक्रें छोड़ दें, बस अपना ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत कर लें, वो अब आपके सारी चीजों का जिम्मेदार है। वो बस फिर उसने देखना सारे आपके कामों को, जब तक जिंदा है तब भी, और जब नहीं हो जिंदा रहेंगे तब भी वो देखेगा। तो मत डिप्रेस हो, मत इसके ऊपर परेशान हो, फिर ये समझ जाएं कि फिर रब का हर फैसला मेरे लिए बेहतरी के लिए ही है। हर फैसला चाहे वो बजाहिर देखने में कैसा ही क्यों ना हो। फिर अब यहां पे देखें, सुभान अल्लाह, एक और बात ये देखें, जब उन्होंने कहा ना कि कश्ती में ऐब डालने की बात की, तो आयत 79 में फअरदतु, मैंने चाहा, लेकिन जब खैर की बात आई तो फअरदना और फअरादा रब्बू का ये आया। ये अदब है, अदब इसको कहते हैं, कि जब इंसान खैर की बात करे तो उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ करे, और जब शर की बात करे तो उसकी निस्बत अपनी तरफ करे। ये खादिर अलैहि सलाम ने इस तरह से कहा। और हमने अपने उस साधुओं से भी यही सुना है कि हमेशा वो यही कहते थे कि जब आपको हमारी तरफ से कोई खैर की बात मिले तो वो अल्लाह की तरफ से, जो कोई गलत बात हो गई हो, भूल चूक हो, ये तो हमारी अपनी कमजोरी है। तो देखें, ये अदब है कि इंसान अल्लाह ताला की तरफ शर मंसूब ना करे, अल्लाह ने ऐसा क्यों कर दिया, अल्लाह ने क्यों ये उसको कर दिया, उसको क्यों नहीं खाना दिया, उसकी मदद क्यों नहीं की, अल्लाह क्यों नहीं सुना उसका, ये उसको वो परेशान था, उसको क्यों नहीं देखा, उसको ऐसे क्यों, जो ये सारे एतराज अल्लाह की तरफ करना अदब के खिलाफ है। देखिए, हम दुनिया में तो बड़े मैनर्स के साथ लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला सबसे ज्यादा इस काबिल है कि उसका अदब किया जाए। उसकी जात से बढ़ के और कौन हो सकता है अदब के काबिल, लेकिन उसके बारे में बात करते हुए हम ऐसे ही जो मर्जी बोल देते हैं। आप अल्लाह के बड़े पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सीखे, वो कहते हैं वइदा मरितु फहुवा यशफीनी, जब मैं बीमार होता हूं तो वो मुझे शिफा देता है। हालांकि बीमारी भी अल्लाह की तरफ से आती है और शिफा भी अल्लाह की तरफ से आती है। ये नहीं कहते अल्लाह जब तू मुझे बीमार कर देते ना तो फिर तू मुझे शिफा देता है, या अल्लाह मुझे बीमार करता है, नहीं, जब मैं बीमार हो जाता हूँ। तो अदब कहाँ गए हमारे। फिर हमें इल्म की अहमियत पता चलती है कि इल्म की कितनी बड़ी अहमियत है कि एक अल्लाह का पैगंबर भी है तो वो चल पड़ा इल्म लेने के लिए। कहते ना, पहले कहा करते थे नॉलेज इज पावर, और वाकई आज जब उम्मत मुस्लिमा ने इल्म लेना सीख छोड़ दिया तो हमारे हालात क्या हो गए। आज वही कौमें दुनिया में आगे हैं जो इल्म के मैदान में आगे। तो एक बड़ी वजह हमारी जवाल की, जहां और बहुत सारी वजूहत है, लेकिन एक बड़ी वजह ये भी है कि इल्म के मैदान में हम पीछे रह गए। हमने इल्म को वो कदर ही नहीं दी, इल्म को हम उसकी वो अहमियत ही नहीं जानी। ठीक है, तो फिर हमें ये भी पता चलता है इल्म सीखना सिखाना बेहतरीन काम है। मूसा अलैहि सलाम ने सिखाते भी थे और सीखने के लिए भी निकले, और कभी ये ना सोचे कि मेरा इल्म काफी हो गया। और फिर हमें पता चला कि इल्म सीखना आसान नहीं है, इसमें मेहनत करनी पड़ती, कंफर्ट छोड़नी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है। जैसे मूसा अलैहि सलाम ने थकन भी उठाई, मेहनत भी की, घर बार भी छोड़ा। और इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि शैतान इंसान को भुला देता है जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जो खास तौर पे खैर के काम होते हैं। तो अल्लाह की पनाह ले लेनी चाहिए। और फिर आप ये भी देख लें कि जब इल्म हासिल करने लगे तो चाहे आपसे कम स्टेटस का बंदा क्यों ना हो, वो एक गरीब आदमी है, वो आपसे कम है स्टेटस में, उसका मर्तबा कम है, फिर भी उससे इल्म हासिल कर सकते हैं, उसमें अपने लिए कोई बेइज्जती ना समझे। जैसे खिजर से ज्यादा बुलंद मुकाम मूसा अलैहि सलाम का है, मगर वो इल्म का मामला आया तो उन्होंने ये नहीं सोचा। बुखारी तो कहते हैं कि तुम कभी मुअज्जज नहीं हो सकते जब तक कि उनसे इल्म सीखने को तैयार ना हो जो तुमसे ऊपर है, और जो तुम्हारे साथ वाले हैं, और जो तुम्हारे से नीचे हैं। तो इंसान, कोई स्टूडेंट भी कोई बात कर दे जिससे वो उस्ताद सीख सकता है, तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है। हाँ, मैं उस्ताद हूँ, ये मुझे सिखाएगा, उसने कोई ऐसी बात की है जो कि जरूरी नहीं है कि उस्ताद का भी इल्म कामिल हो। कोई इस दुनिया के अंदर उस्ताद भी ऐसा नहीं है जो कह सके मेरा इल्म कामिल है, मैं तो सारा कुछ जान गया। नहीं, एक फील्ड में कोई जानता तो दूसरे में नहीं होगा, दूसरे में होगा तो तीसरे में नहीं होगा। हर एक चीज का माहिर नहीं हो सकता, कोई भी नहीं है। और हमेशा याद रखें, इल्म की निस्बत हमेशा अल्लाह की तरफ करें। मूसा अलैहि सलाम ने जब नहीं की तो अल्लाह ताला ने उनको फिर एक सिखाया इस तरह से। ठीक है, और नफामंद इल्म वही है जो हिदायत की तरफ रहनुमाई करता है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इनको लिखते जाएं आप। फिर आपको सबर की अहमियत पता चली। आपसे सर ने फरमाया ना, कोई सबर से बेहतर कोई तोहफा नहीं है जो किसी को मिला। वो सबर बहुत बड़ी चीज है जो किसी को मिल जाएगा, तो सबर करना पड़ता है, चाहे इल्म का रास्ता है, चाहे घर में आप अपने शौहर के साथ सबर करना पड़ता है, बच्चों के साथ सबर करना पड़ता है, आप बाजार में जाते हैं सबर, एयरपोर्ट पे जाते हैं सबर, सफर में सबर कितना करना पड़ता है। सफर में लोग बाज़ हंगामे शुरू कर देते हैं, या अपने घरों में सीन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, बस छोटी सी बात को लेके इतना बड़ा बना देते हैं। फिर जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं, ये भी सब्र के साथ ही है ना, जल्दबाजी नहीं करें किस चीज में भी, चाहे वो इल्म लेना हो, चाहे वो किसी को के साथ मामला करना हो, उसमें जल्दबाजी ना करें। फिर अपनी एक्सप्लेनेशन दे दें अगर कोई गलतफहमी में या बदगुमानी कर सकता है आपके बारे में, फिर भूल चूक अगर किसी से हो जाए ना तो प्लीज उसको माफ कर दिया करें। फिर ये भी हमें पता चलता है कि कोई हरज नहीं है, अगर हम समुंदर का सफर करते हैं तो समुंदर के सफर कर सकते हैं, अल्लाह के नबी ने किया, मूसा अलैहि सलाम ने। इसी तरह लोग अगर माफी मांगे तो उनकी माफी भी कबूल कर लेनी चाहिए, उनकी गलतियों को दरकुस कर देना चाहिए। हमें यह भी पता चलता है कि देखिए अगर किसी के साथ आप नहीं चल सकते तो इतनी हद तक मामलात ना लेकर जाएं कि वो बहुत एक्सट्रीम बात चली जाए, बल्कि पहले ही फिर एक दूसरे से जुदाई ले लें। फिर ये भी हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला कभी किसी पे जुल्म नहीं करता, कभी नहीं जुल्म करता। पहले भी ये बात कुरान में भी आ चुकी है और यहां से भी हमें पता चलता है कि बाज दफा चीजें अगर देखने में समझ नहीं आती और आपको लगता है ऐसे कि ये जुल्म है, तो भी अपने आप को कहें ये जुल्म नहीं है। अरे मैं हैरान होती हूँ, देखें सुबहान अल्लाह, लोग अपने लीडरों के पीछे, सियासतदान है इस तरह, उनके पीछे इतने दीवाने हो जाते हैं कि हक को भी नहीं देखते। कहते हैं हमारा लीडर चाहे गलत भी कह रहा ना, उसकी भी जस्टिफिकेशन देते हैं, कहते हैं नहीं ये सही है, उसकी भी कोई ना कोई तावील निकाल लेते हैं उसको जस्टिफाई करने की। लेकिन ये वो तो इंसान है, वो तो गलती कर भी सकता है, कोई भी हरफे आखिर नहीं है, हर एक से गलती हो सकती है, सब इंसान है। लेकिन उस मामले में हमें कितने सेंसिटिव हैं कि हम किसी को भी अपने लीडर के बारे में कोई बात सुनने को कह दें, वो नहीं सुन पाता और उसकी तावील उसके पास पहले से होती। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला को क्या इतनी भी अहमियत नहीं देते जितने आप अपने सियासतदानों को देते, अपनी पार्टियों को देते हैं, जिस जिस पार्टी के साथ आप खड़े होते हैं। कि अल्लाह ताला का मामला आता है तो कभी ये नहीं कहते कि नहीं ये हुआ है तो इसके पीछे भी कोई बात है, उसकी भी कोई जस्टिफिकेशन दे दें, उसकी भी कोई लॉजिक दे दें, या फिर नहीं दी जाती कहीं पे भी कुछ नहीं, कत्ल के मामले में नहीं दी जाती, तब भी कहते हैं अल्लाह ने इसमें खैर ही रखी, खैर ही है इसके अंदर, बियदिकल खैर, उसके हाथ में खैर ही खैर है। क्यों नहीं ये कह देते कि कद्दर अल्लाह, अल्लाह ताला ने जो तकदीर में फैसला कर दिया वो ही है, जो चाहे वो फैसला करे, माशा फाल, जो उसने चाहा किया। हम कौन होते हैं इसके बारे में कोई सवाल करने वाले। और हाँ ये भी हमारा एक सब्जेक्ट होता था मकासिद शरिया का, जब मैं पढ़ती थी तो उसके अंदर हमें यही सिखाया गया था कि शरीयत के अहकामात को अगर आप समझ सकते हैं ना, उनकी हिकमतें, तो जरूर समझें, ये आपको हेल्प करती हैं, आपके दिल को मुतमईन करने में हेल्प करती हैं। तो अगर आपको हिकमत समझ आ जाती है तो ऐसा ना करें हमने नहीं हिकमत समझ ली, ये ना कहें, अगर समझ आ जाती है तो जरूर समझें उसको, क्योंकि ये आपको दावत के मैदान में भी हेल्प करता है। जब आप किसी को दावत देने जाते हैं ना तो वो आपसे इसी किस्म के सवालात करेंगे कि ये ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, वो क्यों है, ये क्यों फिर हो गया, ये क्यों हुक्म आया, तो फिर आप उनको जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी है तब भी हमने मानना, हमने फिर भी कहना समय ना वाताना, लेकिन अगर समझ आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, कभी इस चीज में पीछे ना रहे कि नहीं मुझे नहीं कोई हिकमत समझ में आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी हमारा तकदीर तो पर तो ईमान है ही, क्योंकि उसके बगैर ईमानियात ही मुकम्मल नहीं होते। एक जो जिन जिन जो जिन चीजों पे हमारा ईमान लाना जरूरी है, वो छह चीजें हैं, उनमें एक चीज तकदीर पर ईमान भी है। तो जब भी आप की जो चीज आपके मुताबिक आपने सोची और उस तरह से नहीं हुई, उस तरह से आपको नहीं समझ में आया, जैसे आप मूसा अलैहि सलाम आगे चले गए, जैसे उन्होंने प्लान किया था वैसे नहीं हुआ, उनकी तो प्लानिंग ये थी ना कि भाई हाँ मछली जाएगी तो हम वहां पे उतर जाएंगे और वहां पे ही वो मिल जाएंगे, तो वहां से तो उनको नहीं वो मिला जो कि उन्होंने सोचा हुआ था, जैसे प्लान किया हुआ था, इतनी आगे जाना पड़ा फिर वापस आना पड़ा। तो कद्दर अल्लाह माशा माशा अफा, कद्दर अल्लाहु, अल्लाह ताला ने इसी तरह लिखा था, माशाअल्लाह, जैसा वो चाहे वैसे कर। तो तब इंसान को इस चीज के ऊपर होना चाहिए, उसके ऊपर भी वाबेला नहीं, उसके ऊपर भी ये नहीं कि ये क्यों हो गया, हमने ऐसे सोचा, हमने ये प्रोग्राम बनाया, ये क्यों इस तरह से हो गया, हमारे हाथ से क्यों निकल गया। और फिर बुखल के नताइज भी आपने देखे लिए। अच्छा फिर एक और बात इसमें पता चलती है कि नेक लोगों के मरने के बाद उनकी यतीम औलाद का ख्याल भी रखना चाहिए। ये आपका उस शख्स को ऑनर देना होता है, ये नहीं कि जब तो वो जिंदगी जिंदा है उस वक्त तो उसकी तारीफें और उसके साथ लगे रहे, जब वो मर गया बेचारा तो उसकी औलाद को देखा ही नहीं। तो जो नेक लोग हैं उनकी औलाद को भी देखना चाहिए बाद में भी। और बाज लोगों ने ये कहा कि खजर अलैहिस्सलाम ने भी तो ये काम किए थे जो बड़े जुल्म के थे, तो वो आज अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह गलत कामों को ये कह के करते हैं कि जिना कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो इसलिए कि खजर अलैहिस्सलाम ने भी तो गलत काम किए थे। तो ये शैतानी बात है, उन्होंने खुद फरमाया। ये बात एक सबूत है कि कोई भी चीज वो अपने उससे नहीं कर रहे थे, वमा फालतू अन अमरी, मैंने खुद नहीं अपने पास से किया, ये सब अल्लाह के हुक्म से है और अल्लाह ताला की रहमत, रहमत उम्मे रब्बी का से पता चलता है कि अल्लाह ताला की रहमत आती है जब इंसान नेक होता है। अब कोई अगर ये कहे बाप की नेकी का तो बच्चे को फायदा हुआ, क्या माँ की नेकी का भी होगा, तो उससे पीछे आप माँ बाप दोनों की नेकी का भी तो देख रहे हैं ना, दोनों की नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने उनके लिए खैर कर दी, उनका दीन ईमान बचाया है। दीन ईमान से बड़ी क्या बात हो सकती है, माल से ज्यादा बड़ी तो नहीं ना, दीन ईमान से ज्यादा बड़ी तो नहीं ना चीज माल, माल तो छोटी चीज है, अल्लाह ताला ने उनका दीन ईमान बचा लिया, इतनी बड़ी बात है ये उन दोनों की वजह से, नेक होने की वजह से। तो अल्लाह ताला माँ बाप की नेकी की वजह से उनकी औलाद को जरूर देता है रिवॉर्ड। और किसी साले की कंपनी में रहना, वो भी आपने देखा, उससे भी इंसान इल्म सीखता है। फिर आपने ये भी देखा कि बच्चों के मामले में भी हमें केयरफुल रहना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो हमारे बच्चे हमारे पर असरअंदाज हो जाए, इम्पैक्ट करें और हमारा दीन कमजोर कर दे, हमें दीन में पीछे ले जाए या अल्लाह ताला की नजरों में हमें गिरा दें। और हमने ये भी देखा है कि जो इल्म वाला होता है और भी इल्म के दरमियान फर्क होता है, और इसके अंदर हमें देखना चाहिए कि जब हम इल्म ले रहे हैं तो इसके असरात हमारे ऊपर होने चाहिए। और फिर इब्ने बकाल ने लिखा है कि इस किस्से में सबक है कि कभी अल्लाह ताला के फैसले को अपनी अकल पे ना परखें, इसलिए कि अकल बेचारी क्या, अकल तो इतनी लिमिटेड है ना, अकल तो कहीं क्यों सुराख किया, हाय बच्चे को क्यों मार दिया, हाय क्यों दीवार खड़ी करने के लिए खड़ी, लेकिन अकल नहीं समझ सकती हिकमतों को। तो कभी अपनी अकल के ऊपर ना फरकें अल्लाह ताला के किसी हुक्म को या उसके किसी फैसले को। अब हम कुरान पढ़ते हैं ना, तब भी उसको अपनी अकल के ऊपर अल्लाह के हर हुक्म को हम परख रहे होते हैं, इसीलिए तो फिर कह देते हैं ये नहीं मेरी अकल में आता, ये नहीं मुझे समझ आ रहा, ये मुझे नहीं पता क्यों ऐसे हुआ। नहीं, तो आप अकल में क्यों परख रहे हैं, या आपको यकीन नहीं है अल्लाह ताला के अलीम और हकीम होने पर। तो ये यहां से हमें इन किस्सों से पता चला कि अगर इन किस्सों में भी अकल पे परखते ना, तो अकल ने तो कहना था सब कुछ ही गलत है। और अल्लाह ताला के जो सारे दुनिया के अंदर मामलात चल रहे हैं, ये जाहिर में कुछ नजर आता है और बातिन में क्या है वो अल्लाह ताला ही जानता है। और हमें समझना चाहिए कि इसका बातिन भी कोई है, इसके पीछे भी कोई चीज है, ठीक है। अच्छा ये भी एक बात है कि उलमा ने लिखा है कि इन मसाकीन ने वो उन बुजुर्ग हस्ती का एहतराम करते हुए उनसे किराया वसूल नहीं किया, तो उलमा कहते हैं ये भी जायज है, अगर कोई इस तरह किसी के साथ नेकी करता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, और उनका इस नेकी को उनसे ले लेना भी कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने नहीं ये कहा कि नहीं हम किराए के बगैर दिए बगैर बैठेंगे ही। और खिजर अलैहिस्सलाम की हिकमत देखेंगे, उन्होंने कैसे डील किया था बादशाह के साथ, ये नहीं कि फरमाया गया मूसा चलो अब हम इस बादशाह के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं, बल्कि कन्फ्रंटेशन को अवॉइड किया और मसाकीन की मदद भी कर दी। फिर हमें ये भी पता चलता है, देखिए एक जगह पे मूसा अलैहिस्सलाम ने इमरा कहा, दूसरी जगह पे नुकरा कहा, तो यानी गुनाह भी एक दर्जे के नहीं होते, जो गलत काम भी होते हैं ना वो एक दर्जे के नहीं होते, कोई बड़े होते हैं कोई छोटे होते हैं। एक जगह पे सुराख किया जहाज में, तो वो तो ठीक है कश्ती में सुराख किया, तो वो एक गलत काम उनकी नजर में था और एक गुनाह का काम उनकी नजर में, उनकी शरीयत में था, लेकिन उससे भी बड़ा गुनाह का काम कत्ल था। इसीलिए तो उन्होंने उससे ज्यादा बड़ा रिएक्शन दिखाया कि ये क्या आपने किया। तो एक बराबर के नहीं है वो, इसीलिए उनका वर्ड्स भी डिफरेंट है। ठीक है, ओके। कत्ल जो है वो किसी का कर दिया जाए तो जान वापस नहीं आ सकती, जो इमलाक है, जो माल है, वो तो फिर भी वापस आ सकता है, कश्ती तो फिर भी फिक्स हो सकती। अच्छा, अगर इसी तरह अगर कोई इंसान गलती करता है ना, तो उसको पहली दफा में ही उसकी गलती पे छोड़ ना दे, उसको चांस दे, जैसे खजर अलैहि सलाम ने चांस दिया, तो मूसा अलैहि सलाम ने खुद ही कह दिया था, तो फिर चले गए वो। अच्छा, ये इतने ही सबक मेरे ख्याल में आज के लिए काफी है। अल्लाह ताला हमें इससे जो इतना भी हमने सीखा है इसको याद रखने की हमें तौफीक अता फरमाए, इसको अप्लाई करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इल्म के तकब्बुर से महफूज रखे, और अल्लाह ताला हमें अपने कामों की हिकमतें सुझा दे, और जो नहीं हिकमतें हमें पता अल्लाह ताला उनके ऊपर भी हमें सब्र करने वाला बनाए। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا